मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 20 अक्टूबर 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आइए कल के ही विषय को अब आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोग संवाद के बारे में बातें कर रहे थे, संवाद जिसे आप एक प्रकार से हमारे परस्पर संबंधों के बीच होने वाला रक्त का प्रवाह कह सकते हैं। जैसे हमारे शरीर में रक्त लगातार प्रवाहित होता रहता है और इस ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ही हम जीवित हैं और हमारे शरीर के वे अंग भी तरोताजा बने रहते हैं। और आपको मालूम है कि शरीर के जिस हिस्से में भी रक्त पहुंचना बंद हो जाता है उस हिस्से के साथ क्या होता है, वो धीरे धीरे मृत प्राय होता चला जाता है। और बिल्कुल यही बात हमारे संबंधों के साथ भी होती है। इसीलिए जो संबंधों को बहुत तरजीह देते हैं फ्रेंड्स, वो संवाद को भी उतनी ही ज्यादा तरजीह देते हैं। देखिए, एक आदर्शवादी बात अलग है कि अरे अरे मैं तुमसे बात नहीं करता हूं तो उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन तुमको तो मैं बहुत चाहता हूं, तुमको तो हम याद करते रहते हैं, आपस में जब हमारे घर में बातचीत होती है तब भी तुम्हारे बारे में बातचीत होती रहती है। ठीक है, इससे उसे थोड़ी सी तसल्ली मिल जाती है, लेकिन जो सर्वोत्तम स्थिति है वो ये कि हम संवाद कायम करें, बीच बीच में अपने लोगों से बातचीत करते रहें। तो दोस्तों, यहां तो हम उस संवाद को तोड़ने की बात कर रहे हैं जो रुक चुका है, यानी कि संवाद का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो किसी वजह से बाधित हो गया है, अब उसे कैसे फिर से प्रवाहित किया जाए, इसके बारे में कुछ बातें मैंने कल आप सबसे की थी। आज मैं उन दो सबसे बड़ी बाधाओं की चर्चा करने जा रहा हूं जो इस सर्कुलेशन को कंटिन्यू नहीं होने देती। जैसे आप कभी नदी को देखिए, जो पहाड़ों से नदियां निकलती हैं, नदी की धारा बह रही है बह रही है बह रही है और बीच में कोई फिर एक बहुत बड़ी चट्टान आ जाती है। अब वो चट्टान उस नदी की धारा को आगे बढ़ने से रोक देती है, लेकिन क्या नदी रुक जाती है? अगर आप कोई ऐसा दृश्य आपने देखा हो तो याद करने की कोशिश कीजिए, लेकिन क्या नदी रुक जाती है? नॉट एट ऑल, नदी रुकती नहीं है। वो दो काम करती है, धीरे धीरे चट्टान को काटना शुरू कर देती है, और हो सकता है कि 100 साल, 500 साल, 1000 साल के बाद वो चट्टान को काट करके ध्वस्त कर दे और उसके ऊपर से बहने लगे। और अदरवाइज तुरंत कम से कम यह करती ही है कि उस चट्टान के किनारे से वो रास्ता बना लेगी या अपनी दिशा बदल देगी, लेकिन नदी रुकती नहीं है, नदी आगे ही बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, ये चट्टान होती है जो रोकने की कोशिश करती है। तो हमारे जो संवाद में जो प्रवाह होना चाहिए, जो बिल्कुल रुक गया है, उसके लिए कौन सी दो चीजें हैं, दो बातें हैं, दो मनोवैज्ञानिक आप कह लीजिए कि गुण हैं, अवगुण हैं, जो इस प्रवाह को रोके हुए हैं। मुझे लगता है कि आप सबको कहीं ना कहीं इसके बारे में कुछ ना कुछ तो मालूम होगा ही, और बेहतर होगा कि मुझे सुनने से पहले आप थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में उन बातों को लाएं कि आप उनसे बात तो करना चाह रहे हैं लेकिन किसी वजह से बात नहीं कर पा रहे हैं। मैं केवल पेरेंट्स तक इसे सीमित नहीं कर रहा हूं, आप इसे अपने बॉस से लागू कर सकते हैं कि बॉस से आप कोई कुछ बात कहना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कहना चाह रहे पा रहे हैं। जो हमारे यंग जनरेशन के लोग हैं, इसे अपने प्रेम के संदर्भ में ले सकते हैं कि वो कुछ कहना चाह रहे हैं या वो कुछ कहना चाह रही है लेकिन नहीं कह पा रही है, नहीं कह पा रहे हैं। सोच करके देखिए कि वो कौन सी बात है जो ऐसा नहीं होने दे रही है। जरूरी नहीं कि सब बातें सब में समान रूप से हों, हो सकता है कि मेरे अंदर चट्टान का जो टुकड़ा है, जो पत्थर का टुकड़ा है, थोड़ा सा छोटा हो, कुछ दूसरा हो, आपके अंदर कुछ दूसरा हो, किसी के अंदर कुछ दूसरा हो। याद रखिए, यह होता सबके अंदर है। एक स्टूडेंट है जो क्लास में बैठा हुआ है, वो टीचर से क्वेश्चन पूछना चाह रहा है लेकिन नहीं पूछ पा रहा है। यहां भी कोई ना कोई चट्टान है, कोई ना कोई अवरोध है जो उसे बात करने से रोक रहा है। लेकिन यहां चूंकि हम स्पेशली पेरेंट्स के साथ के संबंधों को लेकर के बातें कर रहे हैं, तो यहां मैंने केवल दो ही चट्टानों की बात कही है, और वे हैं दोस्तों, एक ईगो और दूसरा फियर। ईगो यानी कि अहम, और दूसरा फियर यानी कि भय। ये किन में होता है? देखिए, सामान्यतया लाइफ में कोई भी चीज बिल्कुल सिद्धांत के तौर पर नहीं कही जा सकती, कही भी नहीं जानी चाहिए। इसीलिए मैं सिद्धांत के तौर पर यह नहीं कह सकता कि जो ईगो है वह केवल पेरेंट्स में होता है, छोटों में भी होता है। लेकिन ज्यादातर मामलों में पेरेंट्स में ईगो होता है और हमारी जो परंपरा रही है, हमारी जो सामाजिक और पारिवारिक संरचना है, उसमें अगर पेरेंट्स में ईगो है तो मुझे लगता है कि जो छोटे हैं, जो उनके बच्चे हैं, उन्हें इसे स्वीकार भी करना चाहिए। बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार इसलिए करना चाहिए कि घर में वे बड़े हैं और हमारी जो पारिवारिक संरचना है, हमारे जो जीवन मूल्य रहे हैं, उसके तहत उनका यह ईगो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जस्टिफाई भी हो जाता है। ये बात अलग है कि ईगो को आप जस्टिफाई कर ही नहीं सकते, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन हमारी जो सामाजिक संरचना है उसके तहत हम मान सकते हैं कि अगर दोनों में से किसी में ईगो हो सकता है या होना चाहिए तो पेरेंट्स में होना चाहिए, बच्चों में नहीं होना चाहिए। अब इसका हल क्या है? इसका हल केवल यही है कि पेरेंट्स को थोड़ा अपने इस ईगो के साथ समझौता करना होगा। आप किसके सामने ईगो दिखा रहे हैं? सोच करके देखिए, अपने ही अंश के सामने, जो आपके जो बच्चे हैं वो आपके अपने ही एक्सटेंशन हैं, तो अपनों के सामने क्या ईगो? अब जो दूसरा फियर है वो किन में होगा? वो बच्चों में होगा। ज्यादातर मैंने देखा है कि कुछ पेरेंट्स भी अपने बच्चों से घबराते रहते हैं, उनके घबराने के कुछ दूसरे कारण होते हैं, हम उन पर नहीं जा रहे हैं, अदरवाइज बिखराव हो जाएगा। पेरेंट्स बच्चों से घबराते हैं, लेकिन सामान्यतया जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से घबराते रहते हैं, और स्पेशली फादर से, पिता से ज्यादातर बच्चे घबराते हैं। मां के साथ तो वो थोड़ी सी लिबर्टी ले लेते हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, और मां होती ही ऐसी है। होती ही ऐसी है का मतलब वो बहुत ही अपेक्षाकृत, बहुत ही ममतामयी, दयालु, कंसीडर करने वाली, तो बच्चे इस बात को जानते हैं कि ये माँ है। माँ होती ही ऐसी है कि जिनसे हम लिबर्टी ले सकते हैं तो लिबर्टी ले लेते हैं। लेकिन पिता की जो बनावट है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, उनकी मानसिक बनावट ही अलग है, तो उनसे घबराते रहते हैं। उन्हें लगता है कि हम अगर बात करने जाएंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें डांट पड़ जाए, कहीं वो नाराज हो जाएं, कहीं वो बिगड़ जाएं, उठकर चले जाएं। इस भय से वो बात की शुरुआत ही नहीं कर पाते, जबकि वो चाहते हैं कि मैं बात करूं। तो दोस्तों, अब इसका हल क्या हो सकता है? इसके हल के लिए अभी इतना समय नहीं है कि मैं आपको कुछ बता सकूं, लेकिन एक बात जरूर है कि जहां पेरेंट्स को अपने ईगो को कम करना होगा थोड़ा सा ही सही, वहीं जो बच्चे हैं उन्हें थोड़ा सा साहसी बनना होगा, या यूं कह लीजिए कि थोड़ा सा दुस्साहसी बनना होगा। उन्हें ये बात स्वीकार करनी चाहिए, कर ही लेनी चाहिए कि ठीक है, थोड़े से नाराज होंगे, अपने ही तो पिता हैं। अगर वो नाराज हो रहे हैं तो मेरे हित के लिए हो रहे हैं, मेरे अहित के लिए नहीं हो रहे हैं। हो सकता है कि उनकी भाषा थोड़ी सी अलग किस्म की हो, उनके जो पैरामीटर्स हैं वो थोड़े से अलग हैं, लेकिन मान करके चलिए कि जैसे भी हैं वो, जो कुछ भी हैं वो हैं, वे आपके हित ऐसी ही। अगर इस बात को आप अपने दिमाग में लाते चले जाएंगे तो देखेंगे कि आपका जो फियर है वो भले ही कम न हो, लेकिन आप वहां जाने का साहस जुटा लेंगे, यानी कि उनके सामने जाकर बातचीत करने का की हिम्मत आपके अंदर आ जाएगी। तो दोस्तों, ये जो दो मुख्य तत्व हैं जो हमारे संवाद के प्रवाह के रास्ते में चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं, इसके बारे में मैंने थोड़ी सी बातें आप सबसे की हैं। आप सब भी इस पर अपने अपने ढंग से विचार करें। अब आप सबसे अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।